ओम शांति। मेरे मन में आज जो कुछ है वो ये है, सुधीर भाई, आए हम सभी इस जीवन की यात्रा को सुंदर बनाएं। है सभी को इच्छा? जीवन बहुत बहुत मूल्यवान है, एक एक के जीवन की कीमत आंकी नहीं जा सकती। जो मनुष्य अपने जीवन को स्वयं वैल्यू देता है, जीवन में दो चीजें विशेष, संकल्पों को वैल्यू देना और समय को वैल्यू देना। जो मनुष्य चाहे लौकिक में हो चाहे अवलौकिक जीवन में हो, इन दो चीजों को जो महत्व देता है, उनका जीवन बड़ा मूल्यवान बन जाता है, आदर्श बन जाता है। हम सभी एक सुंदर जीवन को प्राप्त किए हुए हैं। सभी आज बैठकर यहां गहनता से चिंतन करेंगे, क्या मुझे अपने जीवन की वैल्यू है? जीवन की वैल्यू अर्थात जीवन में बहुत खुशी रहे, संबंधों में बहुत मधुरता रहे, कार्यों में सहज सफलता प्राप्त हो, परिवारों में भी सब कुछ सुखद हो, यह है जीवन की सफलता। किसके पास धन बहुत है, पद पोजीशन बहुत है, परिवार भी बड़ा है, लेकिन जीवन में आनंद नहीं है, तो जीवन की यात्रा बहुत भारी हो जाती है। वर्तमान समय मैं सभी का ध्यान पहले पहले खिंचाना चाहता हूं, लौकिक और अलौकिक दोनों चीजों में। संबंधों में मधुरता रहे, संबंधों में कटुता ना आ जाए। ये संसार में सबको दिखाई दे रहा है कि अपने पराए हो जाते हैं, जिनके लिए माँ बाप ने बहुत कुछ किया वो लात मारने लगते हैं। एक हंसी की बात याद आ गई, ज्ञान सरोवर में प्रोग्राम चल रहा था, एक माता अपने छोटे बच्चे को लेकर भी आई थी, वो बैठने तो उसको क्लास में नहीं देता था, तो किचन के आगे से जा रही थी, छोटा बच्चा गोद में लाके फेंक रहा है ऐसे। मैंने उस माता को कहा, देखो ये छोटा बच्चा अभी आपको लात मार रहा है, आगे संभाल लेना जरा, शुरू से ही प्रैक्टिस कर रहा है। तो हम सभी आज अपने अपने जीवन को देखेंगे, पांच चीजों पर हम चर्चा करेंगे, जिससे किसी भी मनुष्य का जीवन, ये सुंदर यात्रा सचमुच सुंदर बन जाए। पहली चीज सभी ध्यान देंगे, सभी के लिए आत्मिक स्नेह और शुभ भावनाएं, बहुत जरूरत है इस चीज की। आत्मिक स्नेह और शुभ भावनाएं, गृहस्थ में रहने वाले ध्यान दें, माँ बाप का अपने बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार भी होता है और शुभ भावनाएं भी होती हैं। ये अच्छे हो जाएं, ये अच्छे पढ़ लिख लें, इनके कामकाज अच्छे हो जाएं, पर गड़बड़ कहाँ हो रही है? प्यार आत्मिक प्यार नहीं रहता, प्यार मोह में बदल जाता है और मोह अंततः कष्टकारक बन जाता है। सभी जो ग्रस्त वाले यहाँ बैठे हैं वो इसकी प्रैक्टिस करें। सभी बैठे हैं लगभग, बच्चों से परिवार के सभी सदस्यों से आत्मिक दृष्टि से भरा हुआ प्यार, ये मेरे बच्चे हैं, ये नहीं, ये सब आत्माएं हैं। बहुत सुंदर अनुभूति होगी, महसूस होगा कि सुभावनाएं सीधी काम करती हैं और संबंधों के लिए भी हमें शुभ भावनाओं को बढ़ाना है। आजकल क्या हो गया है संसार में, स्वार्थ के कारण प्रेम कड़वाहट में बदलता जाता है। सब जगह यही हो गया है, स्वार्थ पूरा नहीं हो रहा है तो तुम हमारे कुछ नहीं हो। इस स्वार्थ को भी निष्काम भावना में बदलना है। संबंधों का सुख चाहिए तो थोड़ा झुक कर भी चलना है। जो झुकना नहीं जानते उन्हें संबंधों का सुख नहीं मिलता है। जहां अहम है, जहां क्रोध है, वहां ये सुख नहीं है। इसलिए सभी माताएं भी बहुत बैठी हैं, क्रोध और अहम से स्वयं को मुक्त करें। पसंद है? ये नहीं कि अहम किसी में है और किसी में नहीं, अहम लगभग सभी में होता है और उसका सूक्ष्म स्वरूप है मैंपन। एक बुजुर्ग माता में भी हो सकता है जो ये सोचती है इस घर की मालकिन तो मैं हूं, तुम कल से आए मालिक बन गए, सब कुछ तो मैंने बनाया, मालिक तुम, झंझट शुरू हो जाते हैं। मैंपन से मुक्त और क्रोध से मुक्त। कईयों का ऐसा हो जाता है, अभी संबंध जुड़ा और दो चार दिन के बाद ही टकराव प्रारंभ, झुक के चलते नहीं है। इसलिए जो झुके वही महान, जो झुके वही आगे निकलेगा। जो झुकना सीख गए उनको संबंधों का रस प्राप्त होता रहता है। जो झुक गए वो श्रेष्ठ योगी बन जाते हैं। बाबा ने हम सबको बहुत नम्र चित्त बनाया है। मुझे याद है बाबा साकार में जब थे, एक दिन मुरली चल रही थी, तुम बच्चे बाप को कहते थे हे प्रभु मैं तुम्हारा गुलाम हूं। और देखो उस दिन भगवान ज्ञान सागर उछलने लगा कि अब बाप तुम्हें कहता है मैं गुलाम तेरा। सब देखने लगे बाबा को, कौन ऐसी महानात्माएं आ गई हैं जिनको देखकर भगवान बोल रहा है, बच्चे तुम जन्म जन्म मुझे कहते आए, अब मैं तुम्हारी सेवा में उपस्थित हो गया हूं। तो सभी सोच लें, जो सबसे बड़ा है, सबसे अधिक निरहंकारी है, जो इस सृष्टि में सबसे बड़ा है, प्रजापिता ब्रह्मा सबसे अधिक निरहंकारी है, तो हमारे पास तो उनकी भेंट में बहुत कुछ कम है। इसलिए नम्र चित्त होकर व्यवहार को सुंदर बनाएं। आज मैं आप सभी का विशेष ध्यान इस बात पर खिंचवाता हूं, व्यवहार की सुंदरता हमारे जीवन को सुंदर बनाती है। एक छोटा सा उदाहरण ले लीजिए, लोग कहाँ कहाँ छोटी गलती करते हैं। एक व्यक्ति सोया है, दूसरा व्यक्ति फोन से जोर जोर से बात कर रहा है। वो बाहर भी जाके बात कर सकता है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि यहाँ दूसरे व्यक्ति सोए हुए भी हैं। छोटी सी बात है, इतना यदि दूसरों का मनुष्य ध्यान देने लगे, हम दूसरों का ध्यान देंगे तो दूसरे भी हमारा ध्यान रखेंगे। ये संगठनों में आजकल मोबाइल फोन एक ऐसी समस्या बन गया है, वरदान बनकर आया था लेकिन कईयों को ये डिस्टर्ब करने लगा। रात को 12 बजे भी फोन आ रहे हैं, किसका आ रहा है तो बताएंगे भी नहीं, सब जग जाएंगे। ध्यान देंगे सभी, श्रेष्ठ व्यवहार हमारे जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रामायण और महाभारत में, दोनों ही ग्रंथों में एक चीज दिखाई गई, कहीं दिखाया हनुमान को थोड़ा अभिमान आ गया, हमने इतना अच्छा पुल बना दिया था लंका तक, इतने लोग चले टूटा ही नहीं, उसको अनुभव कराया गया तुमने नहीं बनाया था, बनाने वाला कोई और था। महाभारत की तो पूरी कहानी आपको सुना देता हूं, युद्ध के उपरांत अर्जुन को भी थोड़ा अहम आया, हमने इतना बड़ा युद्ध जीता, इतने इतने महारथियों को मार डाला। श्री कृष्ण से इसकी चर्चा की, श्री कृष्ण ने कहा भाई मैं इसका उत्तर नहीं दूंगा, पास में एक ऋषि रहते हैं, चलो उनके पास चलते हैं। पहुंचे, कहा आप ये बताइए महाराज, महाभारत के युद्ध में सबसे ज्यादा वीरता किसने दिखाई? कहा भाई मैं तो इतना नहीं देखा, मैं अपने ध्यान में मगन था, एक बाज ऊपर घूम रहा था, उसको बुला लेता हूँ, कहानियां हैं, उसको बुला लिया। कहा कि ये बताओ आपने सारा युद्ध देखा, सबसे ज्यादा वीरता किसने दिखाई? तो बाज ने उत्तर दिया, मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दिया, केवल एक चीज दिख रही थी कि सुदर्शन चक्र घूम रहा है और सबको नष्ट कर रहा है। तब अर्जुन समझ गया कि मुझे यहाँ क्यों लाया गया है। किसी भी मनुष्य के अंदर जब ये फीलिंग हो जाती है, मैं ये करता हूं, मैं ये करती हूं, मैं न हूं तो कोई न कर सके, मेरे सिवाय ये घर चल ही नहीं सकता, मैं ही तो कमाने वाला हूं, मैं न कमाऊं तो तुम सब भूखे मर जाएं, ठीक है ये बात? देखो नेपाल में आपने देखा होगा फोटो, सारा परिवार मर गया, दो छोटे बच्चे बच गए, एक 4 साल का एक 2 साल का, दोनों एक दूसरे को पकड़ के बैठे हैं, भाई ने अपनी बहन को पकड़े हुए है, वो 4 साल का वो 2 साल की, सोचने की बात है उनकी पालना कौन करेगा, कोई करेगा या नहीं, किसी ने उनको एडॉप्ट कर ही लिया होगा। हर व्यक्ति अपना अपना भाग्य लेकर ही पैदा हुए हैं, कोई किसी की पालना नहीं करता है, तो ये जो मैंपन रहता है इससे हम मुक्त हो जाएं। एक कहानी और सुनाने को मन कर रहा मेरा, बहुत अच्छी कहानी। गुजरात से एक माता आई, बेचारी की आंखों में आंसू थे, मैंने पूछा क्या हुआ है, कहा मैं बहुत गरीब घर से, मेरे को एक लड़का था, मैंने मजदूरी करके उसको इंजीनियर बनवाया, उसकी शादी हो गई, बहू आई, मुझे घर से निकाल दिया। दुखी थी बेचारी बहुत, माताएं सोच रही होंगी ऐसा तो हो ही जाता है, माताएं माताओं को निकाल देती हैं घर से, अब तुम बूढ़ी हो गई, जाओ यहां से, घर मेरा है। मैंने उससे पूछा तो तुम कहां रहती हो, कहा हमारी दीदियां बहुत अच्छी हैं, 4-4 मास हमें सेंटरों पे रखती हैं, कई सेंटर हैं, 4 मास यहां रहो, 4 यहां, खुश हो? खुश तो हूं, पर बेटा मोह तो रहता ही है माताओं का। मैंने उसको हंसाया बहुत कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए, बहू ने तुम्हें भगवान के पास भेज दिया, नहीं तो उसी मोह माया में जकड़ी रहती, मेरा बेटा मेरी बहू मेरा घर इसी में उलझी रहती ना। तब हंसी एकदम से कि हाँ हुआ तो ठीक है। हम सभी इस बात को भूल जाएं, उस माता के पास क्या था, मैंने पूरा जीवन मजदूरी करके 25 साल अपने बच्चे के लिए ये किया, बच्चे ने मेरे लिए क्या किया। माताओं को विशेष रूप से ध्यान रखना है, मैंने अपने कर्तव्य का पालन किया और कुछ नहीं। माँ का ये कर्तव्य है ना अपने बच्चों की पालना करे, उन्हें सब कुछ करके दे, अब वो उनका कर्तव्य है वो करें या ना करें, तो खुश रहना ये अपने हाथ में है। मैं क्रोध पर भी कुछ कहना चाहूंगा सभी को, क्योंकि घर घर में, जिस घर में क्रोध की अग्नि जलती है उस घर में भी सबका जीना मुश्किल हो जाता है। ये क्रोध भी मनुष्य का बहुत बड़ा शत्रु है, जैसे और मनोविकार मनुष्य की सुख शांति को नष्ट कर देते हैं, क्रोध की अग्नि में भी सब कुछ जल के नष्ट हो जाता है। हम अपने क्रोध को शांत करेंगे। पहले तो क्रोध करने वाले को ये एहसास होना चाहिए कि ये क्रोध करना बुरा है। कभी कभी मनुष्य ये सोचता रहता है क्रोध तो करना ही पड़ेगा, इसके बिना काम नहीं चलेगा। क्रोध एक अग्नि है जो हमारी विवेक शक्ति को नष्ट करती है, जो हमारी एकाग्रता को भंग करती है। विशेष रूप से जो योग के मार्ग पर चल रहे हैं उन्हें याद रखना है, एक बार भी दिन में क्रोध आ गया कई घंटों तक चित्त एकाग्र नहीं हो पाएगा, क्योंकि शांत नहीं होगा। जब तक चित्त शांत न हो तब तक एकाग्र नहीं होता है। इसलिए एक बहुत सुंदर धारणा सभी ध्यान से सुन लेंगे। कलयुग के इस अंतिम समय में इस धारणा का बड़ा महत्व है। मैं जैसा चाहूं वैसा ही हो, भूल जाए इसे। मैं जैसा चाहूं वैसा ही हो, सब वैसा ही करें, ये अब संभव नहीं होगा। एक समय था जब ये संभव था, अब समय बदल चुका है। देखिए मैं एक और बात कहता हूं, जो यंग लोग यहां बैठे हैं वो ध्यान देंगे। हमारे देखते देखते एजुकेशन बहुत बढ़ी, पिछले 50 सालों में एजुकेशन बहुत बढ़ी, लेकिन इस एजुकेशन ने एक निगेटिव चीज भी मनुष्य को दे दी। वैसे तो हमारे यहां संस्कृत में बहुत अच्छी कहावत है, विद्या क्या देती है, विनय। विद्या वही विद्या श्रेष्ठ है जो मनुष्य को विनम्र बनाए। लेकिन आजकल की विद्या, जिसको विद्या कहा तो नहीं जाएगा, आजकल का ये कॉलेजों का ज्ञान मनुष्य के अंदर अभिमान को बढ़ा देता है। तो जब युवकों की शादी होती है तो कोई भी झुकने के लिए तैयार नहीं होता, और इसकी परेशानी माँ बाप को और परिवार को बहुत भारी पड़ती है। इसलिए सभी यंग लोग ये ध्यान रखें, विद्या हमें विनम्र बनाए, विद्या हमें झुकना सिखाए, विद्या हमारे श्रेष्ठ जीवन का निर्माण करे। अन्यथा बहुत सारे युवकों में आजकल एक चीज बढ़ती जा रही है, वो है डिप्रेशन, और उसका एक सूक्ष्म कारण है, उस पर भी सभी माता पिता बहुत ध्यान देंगे। कलयुग के अंत में आते आते अनेकों की ब्रेन की शक्ति काफी कमजोर हो गई है। ब्रेन की शक्ति कमजोर और पढ़ाई का प्रेशर ज्यादा, स्कूल कॉलेज में पढ़ के आना है, होमवर्क भी करना है, सबको ट्यूशन करने भी जाना है, कोचिंग हो रही है। हमें याद है हम जब पढ़ते थे ट्यूशन होते ही नहीं थे, सब कुछ स्कूलों में पढ़ा दिया जाता था। हम लोग तो कभी होमवर्क भी नहीं किया होगा जीवन में, क्योंकि घरों में लालटेन होती थी, उसकी रोशनी में कहाँ होमवर्क होगा, गांव में उस टाइम लाइट ही नहीं होती थी। आज ब्रेन की शक्ति कम, क्योंकि भोजन से ब्रेन को शक्ति नहीं मिल रही है। आप सब जानते हैं दूध भी पौष्टिक नहीं है आजकल। हमें तो याद है एक गिलास दूध अगर बचपन में पी लेते थे, कच्चा ही पी लिया करते थे, निकलते निकलते ही लगता था कुछ पी लिया। आज चार गिलास पी लो लगेगा पानी पी लिया। पौष्टिक अन्न नहीं है, घी भी नुकसान करता है। तो ब्रेन की शक्ति कमजोर होती जा रही है, प्रेशर ज्यादा। इसलिए बड़ों को भी ध्यान रखना है, अपने ब्रेन पर प्रेशर न डालें और बच्चों के ब्रेन को शक्ति देने का कुछ साधन अपनाएं। ये माताओं का कर्तव्य है, बच्चों का ब्रेन अच्छा विकसित हो, वो एनर्जेटिक रहे, इस पर बहुत ध्यान देना है। अन्यथा क्या हो रहा है, लोड जो पड़ रहा है, प्रेशर जो पड़ रहा है बच्चों के ब्रेन पर, उससे उसका विकास रुक जाता है और जब वो बड़े होंगे इसका परिणाम उन्हें भुगतना पड़ेगा। तो क्रोध से बचेंगे, क्रोध ब्रेन की शक्ति को नष्ट कर देता है। और मैंने आपको याद दिलाया ये एक्सपेक्टेशंस, ये कामना कि सब कुछ वही करें जो हम चाहते हैं, इसे भूल जाएं। बुजुर्ग कई भाई मुझे दिखाई दे रहे हैं, वो सोचते होंगे कि उनके बच्चे उनकी बात नहीं मानते, और इससे कई लोग बड़े परेशान और दुखी रहने लगते हैं। और बच्चे सोचते हैं हम बहुत पढ़े लिखे, ये हमारे बूढ़े माँ बाप क्या जाने। एक छोटी सी अनुभव की बात सुना दूं, 3 दिन पहले की। एक माता आई मेरे पास, उसने कहा मेरे 2 बच्चे हैं पर दोनों ही मेरी बात नहीं सुनते। मैंने कहा दोनों का परिचय तो कराओ। कहा दोनों ने ही MBA किया है, एक फलानी जगह मैनेजर है, एक इस जगह स्पेशल मैनेजर है। मैंने कहा कितनी आयु हो गई, के बस 32-35। मैंने कहा तो बड़े हो गए ना, वो समझदार हो गए, दोनों ने MBA कर लिया, वो काफी समझदार है ना, अब तुम उन्हें फ्री क्यों नहीं छोड़ दी, कि हैं तो बच्चे ही। मुझे भी हंसी आई, अरे मैंने कहा माता जी आप कितनी पढ़ी लिखी, हम तो भाई हाई स्कूल किया था। मैंने कहा थोड़ा विचार तो करो, अब तुम्हारे बच्चे बड़े हो गए, चलो तुमसे छोटे हैं पर 32-35 साल के बच्चे तो मैच्योर होते हैं ना। अब वो मेरी ही बात सुने, इस बात से टकराव है तीनों के बीच में। दोनों बच्चे माँ की सुनते नहीं, माँ परेशान रहती है, चेंज करे अपने को। मैं तो ये कहता हूं जब आपके बच्चे बड़े हो गए, जब वो समझदार हो गए, जब वो अच्छी पोस्ट पर पहुंच गए, अब उन्हें सम्मान दो, ऑर्डर नहीं। पसंद है भाइयों को, पसंद है ना, अब उन्हें सम्मान दो। बाबा भी सिखाते थे छोटे भी अगर बहुत होशियार हैं भाषण करने में और कुछ सेवा करने में, बड़ों का काम है उन्हें सम्मान देना, इससे परिवारों में प्रेम बढ़ता है, अपनापन बढ़ता है, एक दूसरे में सहयोग बढ़ता है। और ये कामनाएं ही हैं जो क्रोध को जन्म देती हैं। इसलिए अपने चित्त को शांत करने के लिए कामनाओं को दिनों दिन कम करते चलें। एक और धारणा पर मैं आपका ध्यान दिलाऊं, 2 चीजें कलयुग के अंत में बढ़ती जा रही हैं बहुतों के साथ, और आप सभी इससे बचेंगे। कईयों की शिकायत है कि वो बहुत सोचते हैं, और कई दूसरों की शिकायत है कि निगेटिव बहुत सोचते हैं। एक निगेटिव संकल्प आ गया उसके पीछे 100, 200, 500 संकल्प चलते रहते हैं, और ये किसी को नहीं आता कि इन संकल्पों को कंट्रोल कैसे करें। यही एक चीज है जो किसी कॉलेज में नहीं सिखाई जाती कि अगर मन की स्पीड बहुत बढ़ रही है तो उसको कंट्रोल कैसे किया जाए। ये केवल बाबा सिखाता है और बहुत सहज रूप से सिखाता है। इसलिए 2 चीजों की प्रैक्टिस पर सभी ध्यान देंगे, इससे संकल्प की स्पीड कंट्रोल में आ जाएगी। एक है अशरीरीपन का अभ्यास, जिसको अपने मन की स्पीड को कंट्रोल में रखना हो वो दिन में कुछ दिन की साधना बना ले, 15 दिन की केवल, कि मुझे दिन में कई बार 20-25 बार इस गुड फीलिंग में आना है कि मैं आत्मा हूं, ये मेरा शरीर है, बिल्कुल हम दोनों अलग हैं, ये देह अलग, मैं आत्मा अलग। इस अशरीरीपन में सभी संकल्प समाकर शांत हो जाएंगे। करके देखेंगे, ये निराकारी स्थिति होती है जिसमें सभी संकल्प समा जाते हैं। और दूसरी प्रैक्टिस मन को पॉजिटिव करने के लिए स्वमान के अभ्यास, हर एक को सात दिन के लिए सात सुंदर स्वमान की लिस्ट अपने पास रख लेनी चाहिए। एक एक स्वमान हमारे विचारों को महान बनाता है। स्वमान की प्रैक्टिस से मनुष्य सहज ही पॉजिटिव हो जाता है। अन्यथा क्या है, घरों में कई लोग बैठे बैठे सब कुछ अच्छा होते हुए ज्यादा सोचने के कारण दुखी और परेशान होते रहते हैं। सब बचेंगे इससे, सभी चाहे समर्पित हैं चाहे ज्ञान में चलने वाले हैं, इस पे ध्यान देंगे हमारे मन की स्पीड तेज न हो, क्योंकि समय ऐसा आ रहा है, आ गया है कि जब बाहर के वाइब्रेशंस के कारण, बाहर का वाइब्रेशंस बहुत खराब होता जाता है। एक बार अगर मन में कोई बुरा विचार आ गया वो बहुत चलेगा, बहुत चलेगा और दुखी कर देगा, अशांत कर देगा, रात को सोने नहीं देगा। इसलिए अभी से अपने संकल्पों पर बहुत ध्यान देना है। हम क्या सोच रहे हैं, जो कुछ हम सोच रहे हैं क्या वो सोचने की जरूरत है। अपने से थोड़ी सी बात करते हुए अपने को ट्रेंड करेंगे कि हमारे मन की शक्तियां बिगड़ती न रहें, हम कुछ भी सारा दिन न सोचते रहें, तो इससे बहुत फायदा होगा। क्योंकि संकल्प जिसके एकाग्र हैं, सफलता उसके आगे पीछे घूमती है। संकल्प जिसके बिखर गए हैं, मन की शक्ति उसकी नष्ट हो जाती है और कोई भी उसकी बात सुनता नहीं है। सेवाओं में भी उनको बहुत अच्छी सफलता नहीं मिलती है। इसलिए इन दोनों बातों पर विशेष ध्यान सबको देना है। न बहुत सोचने की आदत, न निगेटिव होने की आदत। आदत बनाएंगे, बात हुई खत्म हुई, साथ साथ खत्म करते चलें और आगे चलें। परिवारों में एक दूसरे को सहयोग देना, संगठनों में एक दूसरे को सहयोग देना, ये सहयोग की वृत्ति आपस में स्नेह को भी बढ़ाती है और कार्यों को भी सरल बना देती है। चाहे आप अपने लौकिक घर में ही हैं, एक दूसरे का सहयोग तो चाहिए। जब सहयोग नहीं होता तो एक व्यक्ति थकता है, परेशान होता है, दूसरे के प्रति उसकी दृष्टि बदलती है और घरों में संघर्ष हो जाता है। जो यंग हैं उनको इतना काम कर देना चाहिए कि जो बुजुर्ग हैं उनके लिए कुछ बचे ही नहीं। देखो कितना प्यार मिलेगा बुजुर्गों का, कितना अपनापन हो जाएगा। तो हम सभी इन बातों पर बहुत ध्यान देंगे। फिर से जहां से शुरू किया था, हमारा जीवन बहुत अनमोल है, इसकी वैल्यू को समझ कर चले। मेरे सामने कई प्रत्यक्ष उदाहरण आ रहे हैं। एक का उदाहरण आप हैरान होंगे, एक बहन जिसने बीटेक किया, 10 साल हो गए अब तक नौकरी नहीं मिली, उसका मानसिक हाल बिल्कुल बिगड़ गया, मानसिक कंडीशन बिल्कुल बिगड़ गई, निराशा हो गई। पता नहीं कहां से मेरा फोन मिला, उसे फोन किया भी की बात है, कहा मैं बिल्कुल निराश हूं, मेरे जीवन में कोई खुशी नहीं है, अब तो यही सोचती हूं कि मर जाना ही अच्छा है, लोग भी न जाने क्या क्या बोलते रहते हैं। ध्यान देंगे बाबा के महावाक्य, जो अपने सर्व खजानों को सफल करते हैं उन्हें सफलता का वरदान मिल जाता है। बहुत ज्यादा महत्व है सर्व खजानों को सफल करना और अपने जीवन में पुण्यों का खाता बढ़ाना। मुझे पुण्यों की बात बहुत ही आकर्षित करती है। तो बाबा की मुरली भी चल गई संडे को, तुम पुण्य आत्माएं हो, और कौन कौन से पुण्य किए जा सकते हैं, पुण्य आत्माओं के क्या क्या लक्षण होते हैं, आप सब उन्हें फिर से रिपीट कर लेना अपने अंदर। पुण्य हमारे लिए बहुत बड़ी पूंजी है। सभी को ध्यान देना है कि रोज कम से कम 5 पुण्य हम अवश्य करेंगे। स्वीकार है माताओं को? 5 पुण्य। देखो पुण्य कौन कौन से होते हैं, जो घर बैठे किए जा सकते हैं, जिसमें पैसे की जरूरत नहीं, छोटी कन्याएं भी कर सकती हैं, बड़े बुजुर्ग सब कर सकते हैं। दूसरों को सुख देना, हम अच्छे बोल बोल कर दूसरे को सुख दे सकते हैं। घर में कोई बीमार व्यक्ति है, आप सबको पता है, उसको कैसे सुख दिया जा सकता है। एक व्यक्ति अपनी बीमारियों से बहुत परेशान ही है, निराश हो चुका है, हम उसे आशाएं बंधा दें, बहुत बड़ा काम है ये। एक व्यक्ति के पास पैसा नहीं है, जैसे मैंने कहा नौकरी नहीं मिल रही है, हम उसे मदद कर दें, उसे कुछ राह दिखा दें, उसके मन में उमंग उत्साह भर दें, बहुत बड़ा पुण्य है। सबसे बड़ा पुण्य किसी को भगवान से मिला देना, बहुत बड़ा पुण्य किसी को सत्य राह दिखा देना, रोज करने हैं सबको। बहुत बड़ा पुण्य पवित्रता, दूसरे को पवित्र बनने में मदद करना, सबसे बड़ा पुण्य। और हम सभी जो यहां हैं यज्ञ में, आप सब बहुत भाई बहने सेवा में भी आए हैं, यज्ञ सेवा करना, यज्ञ को सफल करना, इसमें अपना संपूर्ण योगदान देना, ये बहुत बड़े पुण्य हैं। तो यहां रहने वाले तो पुण्य ही पुण्य करते हैं, थोड़ा सा जो पुण्य नहीं है उन पे भी दृष्टि डाल लें। किसी की स्थिति को डिस्टर्ब कर देना, किसी कटु वचन बोलकर किसी की खुशी छीन लेना, किसी को निराश कर देना, किसी के मन में निगेटिव बातें भर देना, किसी को अपवित्रता के मार्ग पर ले जाना, ये सब अब दूसरे कर्म हो गए, नाम आप दे लेना इनको। इसलिए मैं भाई बहनों को माताओं को एक बात बाबा की अवश्य कहना चाहूंगा, बात थोड़ी सी कड़वी है लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपकी कन्या अगर शादी करना नहीं चाहती, पवित्र जीवन जीना चाहती है, तो उसे सहयोग दो, इसमें कोई संदेह नहीं। हम भी आपकी समस्या को जानते हैं कि कन्या को घर में रखना कलयुग के इस गंदे वातावरण में थोड़ा भारी काम है, लेकिन आपके घर में वो देवी है, आपको मालूम होना चाहिए, उसको आप कन्या है, इसे अपने घर जाना चाहिए, हमारे घर में कौन इसे संभालेगा, हम तो बूढ़े हैं, कल हमारी मृत्यु हो गई, कौन इसकी देखभाल करेगा, ये संकल्प नहीं। पवित्रता मनुष्य के लिए सबसे बड़ी सुरक्षा है। पवित्र आत्मा को किसी की ओर प्यासी नजरों से देखने की जरूरत नहीं, जो पवित्र हैं भगवान उनका रक्षक है, जो पवित्र हैं उन्होंने भगवान की आज्ञा पालन की है, वो उनकी हर तरफ केयर करेगा। हम बूढ़े हो जाएंगे तो हमारा क्या होगा, बूढ़ों का क्या हो रहा है आजकल सोच के तो देखो, ऐसे बहुत बूढ़े हैं जिनके परिवार के 10 लोग साथ रहते हैं और बुढ़िया को पानी भी नहीं देते हैं, ये नहीं हो रहा। हम नहीं सुनते रोज बूढ़ों की कहानियां कि बेचारे कितना कष्ट पाते हैं, बाहर रख देते हैं, एक कमरे में रख देते हैं, पूछते भी नहीं हैं। सबसे अच्छी केयर करने वाला बाबा है, हम इस फीलिंग को बढ़ाएं वो मेरा है, अपने जीवन की बागडोर उसके हाथों में सौंप दें, जिनकी केयर भगवान करता हो क्या उन्हें चिंता करनी चाहिए, बताओ। कन्याएं बैठी हैं बहुत, करनी चाहिए। मनुष्य तो किसी की केयर कर भी नहीं पाते, अभी नेपाल में भूकंप हुआ, किसने किसकी केयर की, वो अपने को ही नहीं बचा पाए, दूसरों को क्या बचाएंगे। जिनके ऊपर भगवान छत्र छाया बनकर स्थित हो, जिनका ध्यान भगवान रखता हो, जिसने अपनी जीवन की बागडोर उसके हाथों में सौंप दी हो, उसकी नैया कभी डूबेगी नहीं। तो अपने को बहुत दृढ़ करेंगे, पुण्यों का खाता बढ़ाते चलें और इस जीवन की यात्रा का संपूर्ण आनंद लेंगे। हर एक चेक कर ले, क्लास हम यही समाप्त करेंगे। हर एक चेक कर ले, अगर मैं दुखी हूं तो जिम्मेदार मैं स्वयं हूं, अगर मुझे खुशी नहीं रहती तो मुझे अपने को चेंज करना चाहिए, अगर मुझे दूसरे प्यार नहीं करते तो मुझे चेक करना पड़ेगा मेरी कहां गड़बड़ है, अगर मुझे सहयोग नहीं मिलता तो भी मुझे अपने को चेंज करना पड़ेगा। अपनी स्थिति को महान बनाएंगे, संसार का सहयोग साथ होगा। मुझे तो बाबा की बात याद रहती है, बीज को, जो कल्प वृक्ष का बीज है उसे स्नेह का पानी दो, सारे पत्तों का सहयोग प्राप्त हो जाएगा। तो वो लोग अकेले नहीं हैं जिन्हें भगवान साथ दे रहा है, वो बेसहारे भी नहीं है जिनका सहारा स्वयं भगवान है। ऐसे नशे में रहकर इस जीवन की यात्रा का आनंद लेंगे। ओम शांति।